गुरुवार 25 फरवरी का नमस्कार भारत, फैसल मोहम्मद अली से। संसद में जेएनयू और रोहित विमुला की आत्महत्या पर मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने विपक्ष पर किया पलटवार।
हैव यू एवर सीन राहुल गांधी गो टू वन स्पॉट ट्वाइस? नो, नेवर गॉन।
आज होगा रेल बजट पेश, क्या रख सकते हैं उम्मीदें, सुनवाएंगे एक बातचीत और एक समलैंगिक प्रोफेसर, गे सेक्स वीडियो, जिल्लतों का पहाड़, फिर एक मौत। बीबीसी ने मुलाकात की प्रोफेसर सिराज के प्रेमी रिक्शा चालक से।
जैसे कि कोई एक कोई चीज़ पाल लेता है, वो पंछी, तोता, चिड़िया, कुछ कबूतर, कुछ भी सही, अगर एक अगर एक दो साल अगर वो आदमी के पास रहे, वो एकदम उड़ जाए, उसको एहसास होता है इस बात का।
समलैंगिकता पर बनी फिल्म अलीगढ़ के किरदार अब्दुल, सुनेंगे खास रिपोर्ट, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता खंडपाल से। जेएनयू विवाद और हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित विमुला की आत्महत्या के मामले में कल संसद में भारी हंगामा हुआ। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के बीच लोकसभा में तीखी बहस हुई। स्मृति ईरानी ने कहा कि उन्होंने जातिगत भेदभाव के नजरिए से कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने सदन में उन आवेदन पत्रों का जिक्र किया जो विभिन्न दलों के सांसदों ने उन्हें सिफारिश और शिकायत के तौर पर लिखे थे। राज्यसभा में बहस के दौरान मायावती ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के इस्तीफे की मांग की। एप्पल कंपनी के मुखिया टिम कुक ने सैन बर्नार्डिनो हमले में संदिग्ध के आईफोन का कोड तोड़ने में अमरीकी खुफिया विभाग एफबीआई की मदद नहीं करने के फैसले का बचाव किया है। सैन बर्नार्डिनो में गोलीबारी कांड में पिछले साल 14 लोगों की मौत हो गई थी। एबीसी न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में टिम कुक ने कहा कि अगर एप्पल कंपनी एक फोन का कोड तोड़ती है तो इससे अमरीका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आईफोन इस्तेमाल करने वालों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी।
This case is not about one phone. This case is about the future.
ये एक फोन का मामला नहीं है, ये भविष्य का मामला है। यहाँ ये देखना है कि क्या सरकार एप्पल को बाध्य कर सकती है कि वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए जिससे अमेरिका और दुनिया भर में हमारे ग्राहकों की सुरक्षा के लिए किसी भी तरह का खतरा पैदा हो जाए। ये थे टिम कुक के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के एक विमान ने सीरिया में फंसे लोगों के लिए पहली बार खाद्य सामग्री के पैकेट गिराए हैं। देर एल जोर में करीब 21 टन राहत सामग्री वाले कई बक्से गिराए गए हैं। ये इलाका चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के कब्जे में है। ये नहीं बताया गया है कि लोगों तक ये मदद पहुंच पाई है या नहीं, लेकिन इसमें तकनीकी दिक्कतें आईं इस बात की पुष्टि की गई है। संयुक्त राष्ट्र के राहत कार्य के संयोजक स्टीफन ओब्रायन ने कहा कि युद्ध विराम से ही लोगों तक मदद पहुंचाना संभव हो पाएगा। सीरिया के विपक्षी पार्टियों के मुख्य गठबंधन हाई नेगोशिएशन कमेटी ने कहा है कि वो रविवार से शुरू हुए 2 हफ्ते के युद्ध विराम का पालन करेगा। ग्रीस ने ऑस्ट्रिया और अन्य बाल्कन देशों में प्रवासियों को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की कड़ी आलोचना की है। ऑस्ट्रिया और बाल्कन देशों की सीमा पर बढ़ाए गए नियंत्रण की वजह से हजारों प्रवासी ग्रीस में फंसे हुए हैं। ग्रीस के प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास ने कहा है कि ग्रीस लोगों का स्थायी गोदाम बनता जा रहा है। ग्रीस ने धमकी दी है कि अगर ये देश प्रवासियों को तय अनुपात के मुताबिक प्रवेश नहीं देंगे तो ग्रीस यूरोपीय संघ में प्रवासी संकट को लेकर कोई भी फैसला होने से रोक देगा। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में, स्वागत है श्रोताओं का। सबसे पहले बात करेंगे भारतीय संसद की, जहां कल बजट सत्र के दूसरे दिन दलित छात्र रोहित विमुला की आत्महत्या और जेएनयू में कथित तौर पर भारत विरोधी नारों से उपजे सवालों पर बहस होती रही। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि वो विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर हमला कर रही है, देश प्रेम और देशद्रोह की अपनी परिभाषा गढ़कर लोगों को उस पर थोपने की कोशिश कर रही है। सरकार की तरफ से इन सवालों का जवाब दिया मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने, कुछ भावुक, कुछ गुस्से और कुछ नाटकीय अंदाज में। सरकार के जवाब पर ये रिपोर्ट तैयार की है सुशीला सिंह ने।
दिनभर चली बहस के बाद पहले संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू तो फिर देर शाम मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा। अपने वक्तव्य के दौरान स्मृति ईरानी कहीं भावुक तो कहीं तेज तेवर में नजर आई। स्मृति ईरानी ने पहले दलित छात्र रोहित वेमुला का मुद्दा उठाया।
Have you ever seen Rahul Gandhi go to one spot twice?
No. Never gone.
Never gone.
600 students died for the Telangana movement. Did he go once?
स्मृति ईरानी कह रही थी कि कभी राहुल गांधी को एक जगह दो बार जाते हुए देखा है, वे कभी नहीं गए। तेलंगाना आंदोलन के दौरान 600 छात्रों की मौत हुई, क्या वे एक बार भी गए? लेकिन इस मामले में उनको राजनीतिक फायदा दिखा। ये बच्चा अपनी चिट्ठी में कह चुका है कि उसकी आत्महत्या के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप उसे अपने राजनीतिक जरूरतों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और कहा कि जिस कार्यकारी परिषद ने रोहित वेमुला को बर्खास्त किया था, उस परिषद के हर सदस्य को यूपीए ने नियुक्त किया था। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 26 वर्षीय शोध छात्र रोहित वेमुला ने निलंबन के बाद आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद देशव्यापी विरोध शुरू हो गए थे। स्मृति ईरानी ने इसके बाद जेएनयू में चल रहे विवाद का मुद्दा उठाया। उन्होंने जेएनयू के छात्र उमर खालिद की चिट्ठी का जिक्र किया, जिसमें 9 फरवरी के लिए यूनिवर्सिटी के परिसर में वेन्यू की बुकिंग के लिए स्वीकृति ली गई थी। स्मृति ईरानी ने इस बारे में यूनिवर्सिटी के सुरक्षा विभाग का ब्यौरा दिया।
35 सुरक्षा कर्मी, 3 महिला गार्ड सिग्नेचर्स के साथ अपना बयान देते हैं, कहते हैं कि 16:45 सुरक्षा टीम मौके वारदात पर पहुंची, भीड़ बढ़ने लगी, छात्र उमर अनिर्बान वहीं खड़े रहे, अफजल गुरु मकबूल भट्ट जिंदाबाद, कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी।
उधर देशद्रोह के आरोप में जेएनयू छात्र कन्हैया कुमार तिहाड़ जेल में बंद हैं और उनकी जमानत याचिका पर 29 फरवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं छात्र उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य को दिल्ली की एक अदालत ने 3 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। उधर अंत में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वे सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं कि किसी भी निर्दोष छात्र को पुलिस को परेशान करने नहीं दिया जाएगा।
ये थी बीबीसी संवाददाता सुशीला सिंह। हमारी सहयोगी सुशीला सिंह नहीं, राजनीतिक विश्लेषक नीरजा चौधरी से बात की और पूछा कि दिन भर की पूरी बहस को वो किस रूप में देखती हैं।
हल्ला गुल्ला ही संसद की भाषा बन गया। बहुत समय के बाद एक अच्छी डिबेट सामने आई। विपक्ष ने भी बहुत मजबूती से अपना पक्ष रखा और सरकार ने भी उतनी ही मजबूती से अपनी बात।
सरकार की बात करें तो पहले वेंकैया नायडू बोले और फिर स्मृति ईरानी बोली और उनके जो है संसद में तेवर बहुत ही कड़क दिखाई दे रहे थे।
बहुत नाराज थी, आक्रोश में थी और कहा हाँ मैं पर्सनली दे रही हूँ चीजों को, और इमोशनल बिल्कुल सुपर परफॉर्मर जो कहते हैं ना स्मृति ईरानी तो रही है परफॉर्मर। और अपने फैक्ट्स होमवर्क उन्होंने किया हुआ था, आप अग्री करें नहीं अग्री करें, लेकिन सरकार का डिफेंस बहुत खूबी से किया उन्होंने। और एक नया सितारा मुझे लगा बीजेपी का सामने आया और हो सकता है आगे जाके बीजेपी इनको मुख्यमंत्री का कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में डिक्लेयर करें, क्योंकि कोई चेहरा नहीं है बीजेपी के पास यूपी में। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश 2017 में बहुत क्रिटिकल लड़ाई होने वाली है भाजपा के लिए, जो कि 2019 के रिजल्ट्स को भी तय करेगी। अभी तक सुषमा स्वराज एक फाइन ओरेटर मानी जाती थी, आज स्मृति ईरानी भी उस लीग में आ गई है।
जी, वहीं जब स्मृति ईरानी जवाब दे रही थी, फिर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब दिया, कांग्रेस नदारद थी, तो क्या ये बहस
वॉकआउट कर गए बीच में ही नाराज होके? खैर वो तो हक है, पर पार्टिसिपेट किया डिबेट में, अच्छा रहता अगर सुनते स्मृति ईरानी को और राजनाथ सिंह को एंड तक। एक और इंटरेस्टिंग चीज की डिबेट में दिखी, वो ये था कि हर पार्टी ने अपने सीनियर लोगों को नहीं उतारा लोकसभा में। शुरुआत कांग्रेस ने की ज्योतिरादित्य सिंधिया से, उसका जवाब अनुराग ठाकुर ने दिया, लोजपा के चिराग पासवान बोले और फिर स्मृति ईरानी थी। मतलब यंगर नया लीडरशिप पार्लियामेंट के अंदर पार्टीज का उभर के आ रहा है, ये भी आज दिखाई दिया।
जी, वहीं जो स्मृति ईरानी कह रही थी, जो बयान उन्होंने तथ्यों के साथ पेश किए, उससे किस तरह का संदेश जाता हुआ दिख रहा है जो अभी माहौल चल रहा है देश में उसे देखते हुए?
रोहित वेमुला की खुदकुशी से काफी नुकसान हुआ था भाजपा और बहुत डिफेंसिव पे आ गई थी भाजपा, ने समझ में नहीं आ रहा था इसको कैसे हैंडल किया जाए। पहले तो कहा कि कोशिश की गई कि वो दलित नहीं है, पर जो जो वो आर्ग्यूमेंट देते थे सभी कुछ कुछ क्लिक नहीं कर रहा था। फिर जेएनयू का मसला जब सामने आया तो उसको काफी उभरने दिया ऐसा लगता है भाजपा ने, और वो क्योंकि वो मुद्दा उस इश्यू को सामने ला रहा था जो कि भाजपा अपना मुद्दा मानती है और वो है नेशनलिज्म का, तो वो मुद्दा उसको पूरी तरह आगे ले जाएंगे, भुनाएंगे पॉलिटिकली, ये तो मुझे दिख ही रहा है।
ये थी राजनीतिक विशेषक नीरजा चौधरी। आज संसद में रेल बजट पेश होगा। इस मौके पर हमने ये जानने की कोशिश की है कि क्या कुछ संभावित है इसमें। भारतीय रेल के पूर्व अध्यक्ष केसी जेना से बातचीत की एक बार फिर से सुशीला सिंह ने।
देखिए, अभी जिस फाइनेंशियल हालत पे रेलवे अभी है तो उसको सुधारने का पहला कदम होना चाहिए।
जी, ऐसी खबरें आ रही थी कि भारतीय रेलवे जो है घाटे से गुजर रहा है, तो क्या रेल किराए में बढ़ोतरी की आशंका है इस बार?
देखिए, रेलवे का माल भाड़े में कोई वृद्धि करने का कोई चांस नहीं है, इसलिए कि डीजल प्राइस काफी घट गया है और इस हालत पे यदि रेलवे माल भाड़े का भाड़ा वृद्धि करता है तो फिर सारा ट्रैफिक जो है वो धीरे धीरे करके रोड में चला जाएगा। वैसे तो मंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कैंसिलेशन चार्जेस में कुछ चेंज किए हैं, उन्होंने तत्काल स्कीम में कुछ चेंज करके कुछ एक्स्ट्रा पैसा पैसेंजर में बढ़ाने की कोशिश किए हैं।
जी, ये देखा गया है कि जो रेल मंत्री हैं सुरेश प्रभु, वो ट्विटर पर जैसे ही कोई शिकायत मिलती है या कोई संदेश मिलता है उस पर तुरंत वो कार्रवाई करते हैं, उसमें बड़े ही सक्रिय रहे हैं। लेकिन अगर सुविधाओं की बात की जाए तो क्या इस बार भी उनका सुविधाओं पर जोर रहेगा?
नहीं, लास्ट बजट जब पेश कर रहे थे उस टाइम में तो मंत्री जी ने पैसेंजर एमिनिटीज के ऊपर काफी जोर दिया था। जो अभी गया कोच का निर्माण हो रहा है वो तो जरूर एक अच्छा कदम है और एक फर्स्ट रेक भी मुंबई में आ चुका है और कुछ नए कोचेस बन रहे हैं जिसको लोग जाके चेन्नई में देख के आए हैं, तो इसलिए ये तो अच्छा कदम है और जरूर लोगों को पसंद आएगा। लेकिन ये तो सिर्फ इतने में से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बाकी जो है रेल का टिकट का अवेलेबिलिटी, ट्रेन का साफ सफाई, ये सब पर ध्यान भी जरूर देना चाहिए।
आज रेल बजट पेश हो रहा है, इसकी पूरी रिपोर्ट हम शाम के कार्यक्रम में सुनवाएंगे।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 19, 25, 41 और 49 मीटर बैंड, यानी 5980, 7395, 11995, 15510 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
और अब नज़र डालेंगे भारतीय अखबारों पर।
जी फैसल साहब, आज सबसे पहले बात रेल बजट की। आज रेल बजट पेश होना है, रेल बजट आज 12 बजे पेश होगा। दैनिक भास्कर ने छापा है, बिना किराया बढ़ाए 3,00,000 करोड़ रुपए खींचने की तैयारी।
वही, अच्छा तो किराया बढ़ेगा नहीं
जी, उम्मीद तो यही है। और अमर उजाला ने छापा है, यात्री सुविधाओं पर सरपट दौड़ेगी सुरेश प्रभु की रेल, तो आज सबसे बड़ी खबर इस पर रहेगी हम सबकी नज़र। और एक खबर जाट आंदोलन से जुड़ी, नवभारत टाइम्स ने इसे मुख्य पृष्ठ पर बड़ी प्रमुखता के साथ छापा है, आंदोलन के दौरान मुरथल में 10 महिलाओं से रेप।
तो ये खबरें हर जगह छाए और काफी दुखद खबर है ये।
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में आज इस पर सुनवाई होगी, हाईकोर्ट ने खुद ही इसका संज्ञान लेते हुए सुनवाई करने के लिए बुलाया है। और तोड़फोड़ की भरपाई राजनीतिक दलों से, ये भी इसमें दिया गया है। इसके अलावा एक दैनिक भास्कर ने जो खबर छापी है प्रमुखता से, प्रदर्शनकारी करें नुकसान की भरपाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और ये जो आंदोलनों में तोड़फोड़ करते हैं लोग, इससे जुड़ी खबर है ये। इसमें ये कहा गया कि हार्दिक पटेल जो पटेल आंदोलन चला
आरक्षण, हाँ जी, आरक्षण पटेल अगुवाई कर रहे थे
उनकी जमानत याचिका को लेकर चिंतित हैं। इस बारे में खबर छापी कि गुजरात में पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान हार्दिक पटेल के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज हुआ था और अब इनकी FIR रद्द करने की मांग की जा रही है।
काफी लोगों पर देशद्रोह राजद्रोह के मामले दर्ज हो रहे हैं।
जी जी जी, तो इस पर भी खबर छपी है। और एक खबर जो सबके लिए जरूरी है, कैबिनेट का फैसला है, कार्ड और ऑनलाइन पेमेंट पर नहीं लगेगा सरचार्ज, दैनिक भास्कर ने इसे छापा है। और इसके अलावा नवभारत टाइम्स ने भी इसे काफ़ी प्रमुखता से छापा है, क्रेडिट कार्ड पेमेंट पर अब चार्ज नहीं लगेगा, जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की जाती थी उनके बारे में इसमें खबर छपी है।
तो अच्छी खबर जाते जाते आपने
एक और खबर का जिक्र मैं कर देना चाहती हूँ। द हिंदू ने लिखा है, द फॉरेन सेक्रेटरीज टू मीट फर्स्ट इन काठमांडू रादर देन इस्लामाबाद। ये पठानकोट हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों की मुलाकात के बारे में
आसार हैं और ये होने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब देखते हैं किन किन खबरों पर रहेगी हमारी नजर।
रेल मंत्री सुरेश प्रभु संसद में आज रेल बजट पेश करेंगे। सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि रेल मंत्री सुरेश प्रभु बजट में क्या क्या नई घोषणाएं करते हैं। राज्यसभा में आज जेएनयू विवाद और रोहित विमला की आत्महत्या के मामले में बहस हो सकती है। कल राज्यसभा में इस पर चर्चा की शुरुआत हुई थी, लेकिन हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया था। लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने केंद्र सरकार से हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित विमला की आत्महत्या को लेकर सरकार से जवाब मांगे। इस पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि उन्होंने जातिगत भेदभाव के नजरिए से कोई कार्यवाही नहीं की है। अभिनेता संजय दत्त को आज पुणे की यरवदा जेल से रिहा कर दिया जाएगा। संजय दत्त 1993 मुंबई धमाकों के मामले में दोषी पाए गए थे, जिसके बाद आर्म्स एक्ट के तहत उन्हें 5 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। जेल में अच्छे बर्ताव को देखते हुए उनकी सजा को कम कर दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज से पंजाब के 5 दिन के दौरे पर जा रहे हैं। केजरीवाल पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की तैयारियों का जायजा लेंगे। दिल्ली सरकार को आज सरकारी विज्ञापनों पर किए गए खर्च पर दिल्ली हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करना है। दिल्ली कांग्रेस के नेता अजय माकन ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि दिल्ली सरकार को दिल्ली से बाहर विज्ञापन देने से रोका जाए। सोशल मीडिया वेबसाइट फेसबुक के प्रमुख मार्क जकरबर्ग को आज एक्सेल स्प्रिंगर मीडिया समूह की तरफ से अवार्ड दिया जाएगा।
और अब सुनते हैं दलित छात्र रोहित विमला की कथित आत्महत्या और जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष और दूसरों पर जो देशद्रोह के पुलिस केस दर्ज हुए हैं और गिरफ्तारी के बाद छात्रों के बीच और उनकी जो गिरफ्तारी हुई है उसके बाद छात्रों के बीच इस मामले को लेकर चर्चा जारी है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज को राजनीति का केंद्र बनना ही नहीं चाहिए। हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र ने लखनऊ से रुख किया इलाहाबाद का।
इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक सीनेट हॉल के पास मैं हूँ और ये एक ऐसी जगह है कि जिसकी चर्चा उस तरह से होती है कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ से इस विश्वविद्यालय के छात्रों ने आगे जा कर के अपना परचम न लहराया हो। और आज जब कैंपस को लेकर के, विश्वविद्यालय परिसरों को लेकर के इस तरह की बातचीत हो रही है, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ छात्र हैं विश्वविद्यालय के। क्या नाम है आप?
अंकित त्रिपाठी।
अंकित, बताएं कि जो कैंपस आजकल आप देख रहे हैं, पहले हैदराबाद, जेएनयू, फिर बीएचयू, इस तरह से एक लाइन लगी हुई है, क्यों ऐसा हो रहा है, आपको क्या लग रहा है? आपके विश्वविद्यालय में भी उस तरह का कुछ माहौल दिख रहा है क्या?
जी, थोड़ा बहुत तो हर जगह दिख ही रहा है, क्योंकि जो नहीं जीता वो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है।
सर, मेरा नाम आशिया है और मुझे ऐसा लगता है कि भारत जो सबसे बड़ी शक्ति के रूप में जाना जाता है वो है लोकतंत्र। और जैसा कि विश्वविद्यालयों में देखा जा रहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो लोगों की छीनी जा रही है।
विशाल सिंह, हम
जी नहीं, राजनीति से इसको दूर रखा जाना चाहिए, एक्चुअली ये होना चाहिए, लेकिन हाँ, ये भी है, ये तो प्रथम पाठशाला है, राजनीति की ये प्रथम पाठशाला है।
हमें ऐसा लगता है कि जब तक पूरी बात हम जानते नहीं हैं, हमें उस पर अपने विचार व्यक्त नहीं करने चाहिए। हुआ बेसिकली यही है, जेएनयू वाला जो भी केस था, लोगों को पता ही नहीं चल पाया कि वो मेन केस था, लेकिन जो बीच के कुछ लोग थे उसको गलत तरीके से मीडिएट करके।
बीच के लोग कह रहे हैं, तो ऐसे बीच के लोग आपको क्या लगता है कौन लोग हैं?
हमारे एंटी लोग भी हो सकते हैं और राजनीतिक पार्टी भी हो सकती है।
जो रोहित वेमुला का मामला है, जो कि ये विश्वविद्यालय से सीधा जुड़ा हुआ मामला है, ऐसी स्थितियां क्या आपके विश्वविद्यालय में कभी देखने को मिली हैं?
है, यहाँ पर माहौल है, वैसा हाँ, माहौल है, हाँ, बहुत सारे समुदाय फैलाने वाले संगठन है।
किसी भी विश्वविद्यालय में वहाँ भी यही हुआ था कि एक MP ने सीधे इंटरफेयर किया था, VC को सीधे ये लेटर करके उसे वहाँ से उसे निष्कासन के ऑर्डर दिए गए थे, इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट सीधे इन्वॉल्व थी। तो मैं कहता हूँ कि किसी भी विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल पार्टियों का, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सीधा इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। और सर, रही बात यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय की रोहित वेमुला, तो अभी तक तो नहीं है, लेकिन जो स्थितियाँ हैं, हो सकता है कि आगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी रोहित वेमुला वाली स्थिति बने।
सर, मैं एक लाइन जोड़ना चाहती हूँ। सर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अभी एक नियुक्ति पर बहुत ही क्वेश्चन चल रहा है, OSG की, जो वाइस चांसलर ने आने के बाद उन्होंने एक नियुक्ति की थी, जिसको नियुक्त किया है सर, उनके ऊपर कुछ चार्जेस लगे हुए हैं। एक दलित छात्रा जो विमेन हॉस्टल में, शताब्दी हॉस्टल में रहती थी, उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगा, FIR है उनके खिलाफ।
ठीक है, इस एक चीज और एक सवाल पूछूंगा कि जो एक लोकतांत्रिक तरीका होता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, वो इस विश्वविद्यालय में आपको कितनी दिखती है?
हर जगह पूरे देश में जिस तरीके से विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर हमला हो रहा है वो डेमोक्रेटिक के लिए बहुत बड़ी हानि है।
बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों ने इस बातचीत में हिस्सा लिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों से बात कर रहे थे समीर आत्मज मिश्र।
खबर सच है अगर BBC पर है।
अब सुनवाते हैं आज की खास रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रामचंद सिराज पर बनी फिल्म अलीगढ़ 26 फरवरी को यानी कि कल रिलीज हो रही है। वर्ष 2010 में 3 टीवी पत्रकारों ने प्रोफेसर सिराज और एक रिक्शा चालक के समलैंगिक यौन संबंधों पर एक वीडियो बनाया था, जिसके कारण प्रोफेसर सिराज को यूनिवर्सिटी से सस्पेंड कर दिया गया और कैंपस से बाहर कर दिया गया। 2 महीने के बाद उनकी मौत हो गई। विनीत खरे ने अलीगढ़ में उस रिक्शा चालक से मुलाकात की। सुरक्षा कारणों से BBC उस रिक्शा चालक का नाम बदल रहा है और उसे हम अब्दुल के तौर पर पेश कर रहे हैं। रिपोर्ट शुरू हो रही है उस विवादास्पद वीडियो के अंश से।
इनका हमने पूरा शूट किया है, इनको सेक्स करते हुए, होमोसेक्स करते हुए हमने शूट किया है।
नग्न अवस्था में पाए गए।
ये आवाज है उन टीवी पत्रकारों की जो फोन पर किसी से बात कर रहे थे। इन पत्रकारों ने 8 फरवरी 2010 को प्रोफेसर रामचंद्र सिरास और एक रिक्शा चालक का छिपकर सेक्स वीडियो बनाया था। बातचीत कर रहे पत्रकारों के बगल में रिक्शा चालक अब्दुल के पैर डर के मारे थर थर कांप रहे थे।
क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है?
आप लोग कौन हैं?
हम मीडिया से बोले।
मीडिया के लोग
क्या हो रहे हैं?
प्रोफेसर सिराज के कमरे में जो कुछ हुआ वो अब्दुल के जहन में आज भी आईने की तरह साफ है। कैसे वहां हुए कथित स्टिंग ऑपरेशन ने उन दोनों के जीवन को तार तार कर दिया। शर्म, सार्वजनिक निंदा, तीखे कटाक्ष की बाढ़ के बीच प्रोफेसर की कुछ ही महीनों बाद मौत हो गई। मगर रिक्शा वाला अब्दुल आज भी डर के साए में गुमनाम जिंदगी बिता रहा है। डर कि कहीं कोई पहचान न ले, कहीं 5 बेटियों के लिए दिन के 200 रुपए जुटाना भी मुहाल न हो जाए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दफ्तर से BBC को मिली CD के उस दिन के दृश्य किसी के भी रोंगटे खड़े कर देते हैं। बहुत कोशिशों के बाद मेरी अब्दुल से मुलाकात हुई। सांवला ढला सा शरीर, धारीदार शर्ट और सफेद पैंट, पेट निकला हुआ, बढ़ी दाढ़ी और हाथ में सस्ता सा मोबाइल। अब्दुल को उम्मीद थी कि प्रोफेसर का प्रेम, उनके साथ शादी उन्हें जीवन की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, लेकिन उनकी मौत ने उनके सारे सपनों को चूर कर दिया।
जाहिर सी बात है, वो मरने के बाद में आदमी मोहब्बत करेगा। जब इतना समय किसी आदमी ने बिताया हो डॉक्टर से, इतना सारा समय, और वो अचानक जैसे कि कोई एक कोई चीज़ पाल लेता है, वो पंछी, तोता, चिड़िया, कुछ कबूतर, कुछ भी सही, अगर एक दो साल अगर वो आदमी के पास रहे वो एकदम मुड़ जाए तो उसको एहसास होता है इस बात का।
1981 में दिल्ली में शादरा की जनता कॉलोनी में जन्मे अब्दुल 1992 दंगों के बाद अलीगढ़ आ गए। पिता मजदूर थे, परिवार में 2 बहनों और 1 भाई का बोझ था, इसलिए मुश्किल से ही घर का खर्च चलता था। 14 साल की उम्र में ही उन्होंने रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। अब्दुल विश्वविद्यालय की आर्ट्स फैकल्टी के बाहर रिक्शा चलाते थे। 2009 में एक दिन उनकी मुलाकात श्रीनिवास रामचंद्र सिराज से हुई। आर्ट्स फैकल्टी से मात्र 10 मिनट की दूरी पर मेडिकल कॉलोनी में उनका घर था। अब्दुल उनके घर गए जहां उन्होंने यौन संबंध कायम किए।
उन्होंने पूछा घर में कौन कौन है, मेरी बहन शादी की नहीं है, एक बहन की शादी कर दी, एक भाई शादी की नहीं है, मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है साहब। जब उन्होंने कहा कि तुम किसी से बोलना मत और हम लोग अपने संबंध बनाए रखेंगे, तुम्हारी बहन की शादी कराऊंगा, तुम्हारे लिए मैं एक घर दिलाऊंगा रहने के लिए, मेरा रिटायरमेंट है कुछ दिनों के बाद, उन्होंने मुझे ऐसा बताया था।
फिर आपने क्या कहा?
मैंने कहा ठीक है सर। जब किसी आदमी को जब कुछ चीज़ आदमी सारा लगा के तो उसकी तो बात माननी पड़ी है, फिर मुझे भी एक लगाव सा हो गया।
अब्दुल कहते हैं कि थोड़े लालच के बावजूद उन्हें यह अनुभव अच्छा लगने लगा। अब्दुल उस वक्त शादीशुदा थे, उनकी 3 लड़कियां थीं। उनका ये कहना कि इससे पहले उन्होंने सिर्फ अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाए थे और प्रोफेसर सिराज के साथ इस अनुभव ने उन्हें अपनी यौन अवस्था के अलग पक्ष के बारे में सोचने पर मजबूर किया, कई सवाल उठाता है। क्या यह संभव है कि 29 सालों तक किसी व्यक्ति को अपने समलैंगिक होने के बारे में पता ही ना चले? प्रोफेसर सिराज की मदद करने वाली संस्था नाज फाउंडेशन की अंजलि गोपालन कहती हैं, ऐसा नहीं हो सकता। अंजलि गोपालन कह रही थी कि वो ऐसे बहुत से मर्दों को जानती हैं जिनके दूसरे मर्दों के साथ संबंध हैं। अंजलि कहती हैं कि अब्दुल की सभी बातों पर यकीन करना सही नहीं है और वो खुद दूध के धुले नहीं हैं। अब्दुल का ये दावा भी है कि उन्होंने न कभी प्रोफेसर से पैसा मांगा, न प्रोफेसर सिरास ने उन्हें पैसा दिया। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन इस पूरे मामले को पेड सेक्स का मामला बताता है। और एक दिन फरवरी 2010 को तीन पत्रकारों ने हाथों में कैमरा लिए उनके जीवन और कमरे में प्रवेश किया। घटना के बाद घबराए अब्दुल घर से बाहर निकल गए। जब अब्दुल को प्रोफेसर सिरास की मौत की खबर मिली तो वो बहुत डर गए कि कहीं पुलिस उन पर न शक करे। पुलिस ने उन्हें कई बार पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ का सिलसिला हफ्तों चला। उन्हें पता था कि अगर कहीं डर कर भागे तो शक उन्हीं पर जाएगा। लेकिन बार बार पूछताछ से परेशान अब्दुल ने एक दिन घर में खुद पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा ली।
पुलिस हरदम उठा के ले जाती थी डॉक्टर साहब का नाम कहीं
क्या पूछते थे,
क्या यही पूछते थे किसने किया, कैसे हुआ, क्यों हुआ। बस बार बार उनके पुलिस के तो उल्टे सीधे सवाल पूछने गए थे। बस खाली एक मिट्टी का तेल रखवा था वहाँ घर में आग जलाने के लिए। सर मैंने पूरी बस कपड़े वपड़े सब छेक लिया और
घर पे किया।
हाँ घर पे मस्जिद दिखा दी। इतने मेरी
घर में कोई नहीं था।
हाँ मेरी बीवी थी, अंदर थी, कमरा खुला हुआ था, कुछ टाइम किराए पर रहा था। कमरे में किवाड़ थी। हाँ उसमें बस किवाड़ मैंने फेड़ दी थी, कुंडी नहीं थी उस टाइम अंदर। तो उन्होंने जैसे मेरी लुक को देखी ना लगती आग में, इसी के शरीर में आग जैसे जली पूरे कपड़ों में मेरे में एकदम आके। सर उन्होंने मुझे कम्बल रखा हुआ था, उन्होंने एकदम कम्बल लेकर उन्होंने जिद भर दी थी मेरी। तो उस टाइम तो मैं बच गया सर। बस
उन्हें डर है कि कहीं कोई प्रोफेसर सिरास की प्रॉपर्टी के मामले को लेकर उनकी हत्या न कर दे। वो हंसल मेहता से भी आर्थिक मदद चाहते हैं। हंसल मेहता से उन्हें शिकायत है कि फिल्म से जुड़े किसी व्यक्ति ने उनसे अलीगढ़ में आकर मुलाकात नहीं की, हालांकि फोन पर उनसे बात की गई थी।
मैं बहुत करीब रहा हूँ डॉक्टर साहब के, पार्टनर रहा हूँ, मुझसे मालूम करते थे कि डॉक्टर साहब कैसे फिल्म थी, कैसे कहानी थी, कैसे बैठते थे, कैसे उठते थे डॉक्टर साहब, कैसे जीने पर चढ़ के आते थे, कैसे थक जाया करते थे उस टाइम वो, और कैसे हम लोग इंजॉय करते थे, कैसे मुस्कुराते थे, कैसे हंसते थे। सब मैं डॉक्टर के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ लेकिन मैं किसी को बताना चाहता नहीं हूँ, अपने दिल की बात दिल में रखना चाहता हूँ उसमें।
हंसल मेहता ने बीबीसी को बताया कि फिल्म देखने के बाद सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। अब्दुल को विश्वास है कि अगर प्रोफेसर सिरास आज जीवित होते तो वो किराए के मकान में नहीं रह रहे होते, उनके बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ते, उनके पास पैसा होता, उनका कोई कारोबार होता। आज अब्दुल कहते हैं कि लोगों ने उनसे वायदे तो किए लेकिन इतने सालों में उन्हें कुछ नहीं मिला। विनीत खरे, बीबीसी अलीगढ़।
और अब वक्त हो चला है खेल समाचारों का।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं रजत चांदना। कार्यक्रम की शुरुआत भारत की T20 एशिया कप में हुई विजय से। भारत के 167 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही बांग्लादेश की टीम को मिली 45 रनों से मात। कप्तान धोनी के नेतृत्व में भारत के गेंदबाजों का दबदबा बना रहा और बांग्लादेश के 15 रनों पर ही दो विकेट गिर गए। उसके बाद मेजबान बल्लेबाज भारतीय स्कोर के दबाव में दिखे और विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा। 20 ओवर में बांग्लादेश 7 विकेट के नुकसान पर 122 रन ही बना पाया। भारत के लिए आशीष नेहरा ने 3 विकेट लिए। पूर्व भारतीय खिलाड़ी निखिल चोपड़ा काफी खुश दिखे भारतीय टीम के इस प्रदर्शन से।
बेहतरीन अंदाज से शुरुआत हुई एशिया कप के पहले ही मैच में। जिस तरीके से भारतीय बल्लेबाजों ने एक मुश्किल विकेट पे इतना अच्छा स्कोर एक सेट किया, उसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं और कोई मौका ही नहीं दिया बांग्लादेश टीम को वापस मैच में आने का।
इससे पहले भारत के लिए शुरुआती झटकों के बाद रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या की शानदार पारी की मदद से भारत ने मैच में वापसी की। भारत के 42 रनों पर 3 विकेट गिर गए थे लेकिन रोहित ने 55 गेंदों पर 83 रनों की पारी खेली जिसमें 7 चौके और 3 छक्के शामिल थे। वहीं हार्दिक ने 31 रनों की विस्फोटक पारी खेली। कप्तान धोनी ने आखिरी गेंद पर छक्का जड़ा जिसकी मदद से भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 166 रन बनाए। वहीं पुणे के MCA स्टेडियम में मुंबई और सौराष्ट्र की टीम के बीच जारी रणजी ट्रॉफी फाइनल के मुकाबले में सौराष्ट्र की शुरुआत अच्छी नहीं हुई। मुंबई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और मुंबई के गेंदबाज सौराष्ट्र के बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटे और मात्र 95 रनों पर सौराष्ट्र के 6 विकेट गिर गए। लेकिन उसके बाद सौराष्ट्र ने मैच में वापसी की और अर्पित वासवादा ने 77 और प्रेरक मनकर ने नाबाद 55 रनों की पारी खेली जिसकी मदद से दिन के खत्म होने तक सौराष्ट्र ने 8 विकेट के नुकसान पर 192 रन बना लिए थे। उधर क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए कल दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को दी 7 विकेट से मात और 2 मैचों की सीरीज को 2-0 से जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने ICC टेस्ट रैंकिंग में फिर से शीर्ष स्थान पर कब्जा किया।
कार्यक्रम समाप्ति को है लेकिन समाप्त करने से पहले सुनते हैं एक बार फिर से बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार। JNU विवाद और हैदराबाद यूनिवर्सिटी के दलित छात्र रोहित विमला की आत्महत्या पर लोकसभा में हुई बहस में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि उन्होंने जातिगत भेदभाव के नजरिए से कोई कार्रवाई नहीं की है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के एक विमान ने सीरिया में फंसे हजारों लोगों के लिए पहली बार खाद्य सामग्री के पैकेट गिराए हैं। ग्रीस ने ऑस्ट्रिया और अन्य बाल्कन देशों में प्रवासियों को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की कड़ी आलोचना की है। बीबीसी समाचार
कार्यक्रम के स्टूडियो मैनेजर थे अजीत साथी। अगली मुलाकात विश्व भारती में एक घंटे बाद।